साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज विश्व एनजीओ दिवस के अवसर पर ताखिर संस्था के संस्था सचिव रेशनरिस्ट एवं वरिष्ठ पत्रकार पिकेश गुर्वे जी मोबाइल वाणी के मंच पर आज आप लोगों से रूबरू होने जाए। नमस्कार गुर्वे जी।
नमस्कार पातुकर जी।
गुर्वे जी, जैसा कि आज संपूर्ण विश्व में विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हम आपसे जानना चाहते कि इस दिवस को मनाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी और आज ही के दिन यह दिवस क्यों मनाया जाता है?
दिनकर जी, हम अक्सर एक बात कहते रहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हम जब कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति समाज के लिए, समाज के हितों के लिए काम करता है। और ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक हितों की रक्षा के लिए या समाज के विविध घटकों पर स्वयं प्रेरणा से, स्वयं स्फूर्ति से काम कर समाज को एक नई दिशा, नया मार्गदर्शन देने के काम करने वाले जो देश में जो लोग हैं, विश्व में जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो जो विश्व एनजीओ दिवस जो है, वर्ल्ड एनजीओ डे जो है, इसको मूलतः जो मान्यता मिली थी वो 27 अप्रैल 2010 को इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली थी, लेकिन जब इसको मनाना शुरू किया गया है तो ये सन 2014 से प्रतिवर्ष 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में, यानी राष्ट्रीय एनजीओ दिवस के रूप में या सामाजिक संगठनों के रूप में इसको मनाया जाता है। एनजीओ का अर्थ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। अब शब्द से स्पष्ट है, गैर सरकारी संगठन काम करेगा सरकारी संगठन जैसा ही, लेकिन इसमें काम करने वाले जो लोग होंगे वो गैर सरकारी होंगे। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष ये डे मनाया जाता है। और पूरे विश्व में 89 देशों में और 6 महाद्वीपों में इस दिवस को मनाया जाता है।
गुर्वे जी, जैसा कि देखने में आया है कि पूरे विश्व में यूनिसेफ और अन्य कई देश सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, वैसे ही भारत में भी कई एनजीओ काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते कि ऐसी कुछ संगठनाएं जो नवाचार के रूप में उभर कर आई है, जो गवर्नमेंट के बगैर सहयोग से चल रही है, क्या ऐसी कुछ संस्थाएं है?
देखिए दिनकर जी, एनजीओ सामाजिक संगठन देश में मेरे हिसाब से दो तरीके से काम करते हैं। कुछ एनजीओ समाज में काम कर रहे हैं, वो शासन की योजनाएं हैं या जो संगठनाएं फंडिंग करती है उनके विषय है, उन विषयों पर समाज में काम करने के लिए वो या तो शासन से धन लेती हैं या फिर फंडिंग एजेंसियों से धन लेती है, और उनके जो नियम हैं, उनके जो जो अनुबंध होते हैं, उन नियमों के आधार पर ये एनजीओ समाज में काम करते हैं। मूलतः ये एनजीओ शासन या फंडिंग एजेंसियों से मिलने वाले धन पर आश्रित होती है। फिर इन एनजीओ का एक दूसरा भी पहलू है, वो समाज में काम तो करते हैं लेकिन किसी प्रकार की शासन से या किसी फंडिंग से धन प्राप्त नहीं करते हैं। मैं आपको इसका एक बड़ा उदाहरण बताता हूं। मैं रेशनलिस्ट हूं, समाज में कुरीतियां, पाखंड, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, इस विषयों पे काम करता हूं। और भारत में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये एक ऐसा एनजीओ है कि जो शासन से एक भी रुपये का लाभ नहीं लेती है, किसी प्रकार की फंडिंग एजेंसी से भी पैसा नहीं लेती है। यह पूरी संगठन, यह पूरा एनजीओ, इस एनजीओ में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनके द्वारा स्वयं या फिर इन विचारधाराओं के, रेशनलिस्ट विचारधाराओं के लोगों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर ये एनजीओ खड़ा है। एक अकेला यही एनजीओ नहीं, तो विश्व में, देश में ऐसे कई एनजीओ है जो जन भागीदारिता से, जन सहयोग से संचालित हो रहे हैं। तो एक एनजीओ का दूसरा वर्ग ये भी है कि जो शासन या फंडिंग एजेंसियों से लेकर समाज में काम करता है।
गुरुवे जी, जैसा कि आपने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा श्रद्धा निर्मूलन समिति की बात कही, जो वर्तमान समय में संपूर्ण देश में तटस्थता को लेकर चर्चाओं में रही है और इस समिति ने कई बाबाओं की पोल भी खोली है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई सौंसल विकास खंड के अंतर्गत आपका स्वयं का भी एक तर्कशील संस्थान नामक एनजीओ है और जिनका एक नवाचार सामने आया है कि बगैर शासन के सहयोग के आपने आंगनवाड़ी को गोद लिया है, उस गांव में आपने एक नवाचार कर दिखाया, तो वो कैसे और किस तरह संभव हो पाया?
दिनकर जी, मैं देश की लगभग एक दर्जन से अधिक जो एनजीओ है, जो पुरोगामी विचारधाराओं के संगठन है, रेशनलिस्ट संगठन है, इनसे मैं एक लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, काम भी करता हूँ उन लोगों के साथ में। लेकिन बीते कुछ वर्ष पहले मैंने अपना एक स्वयं का एनजीओ, एक सामाजिक संगठन खड़ा किया जिसका नाम है तर्कशील विचार समिति। संगठन का नाम तर्कशील और विचार इसलिए रखा गया है कि हमारे संगठन का पहला जो मोटो है, पहला सिद्धांत जो है कि जब तक आप किसी व्यक्ति का वैचारिक परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके लिए किए गए किसी भी विकास कार्य की कोई महत्वता नहीं होगी। मनुष्य का पहले रेशनल होना जरूरी है, उसका बुद्धि प्रामाण्यवादी होना जरूरी है, उसका विवेकवादी होना जरूरी है, और उसके बगैर उसके लिए किए गए किसी भी विकास को, विकास सार्थक साबित नहीं हो सकता है। इसी विचारधारा को लेकर संसद तहसील के ग्राम पंचायत रामाकोना के आश्रित ग्राम बिछुई पर, बिछुई में बीते 2-3 वर्षों से हम लोग वैचारिक परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। ग्रामीणों के बीच में बैठकर, ग्रामीणों के साथ में सहभागिता कर, उनके साथ में संपर्क बनाए रखकर, उनके साथ में हम लोग वैचारिक परिवर्तन पे अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। और जब ये वैचारिक परिवर्तन के अलग अलग मुद्दों पर हमने काम करते हुए लोगों के बीच में हमने विवेकवाद, रेशनलिज्म लाना शुरू किया, तब हमको लगा कि अब मूलतः किसी वर्किंग पर भी काम करना चाहिए, किसी ठोस कार्य को भी इस गांव में शुरू करना चाहिए। दिनकर जी, आप जानते हो आंगनवाड़ी जो है बच्चों का केंद्र है, जहां से बच्चों का जो मूलतः शिक्षण जो होता है वो वहां से शुरू होता है, आंगनवाड़ियों से। आंगनवाड़ी हमारा मूल केंद्र है ग्रास रूट लेवल का, बच्चों में एजुकेशन हो, संस्कार हो, सारी चीजें वहीं से शुरू होती है। और कहा जाता है कि बच्चे ये गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को आप जो आकार देना चाहे वो आप दे सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर तर्कशील विचार समिति ने बिछुई की शासकीय आंगनवाड़ी को गोद लिया है, ये बीते वर्ष गोद लिया है। और इस आंगनवाड़ी में पहला काम बच्चों को चित्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराने के लिए वॉल पेंटिंग का काम किया गया है। ये काम पूरी तरह जनसहयोग से, और जनसहयोग से की बजाय ये कहिए कि समिति का अपना एक सामाजिक फंडिंग है, हम उसी फंडिंग के आधार पर ये काम कर रहे हैं। हम शासन से किसी भी प्रकार की कोई सहायता या किसी फंडिंग से कोई राशि नहीं ले रहे। दिनकर जी, मैं आपको बता दूं कि तर्कशील विचार समिति से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, इसमें से कई मेंबर्स ऐसे हैं कि जो अपनी प्रति माह की सैलरी से 1% 2% संगठन को दान के रूप में दे रहे हैं, और उसी के आधार पर ये संगठन काम कर रहा है। आंगनवाड़ी में वॉल पेंटिंग के बाद में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत कुछ काम अभी करना बाकी है। और ये प्रयास है कि बगैर किसी शासन से या किसी फंडिंग से पैसा लिए बगैर उस आंगनवाड़ी को मध्य प्रदेश की पहली आदर्श आंगनवाड़ी बनाना, ये संगठन का उद्देश्य है, संगठन के साथियों का ये उद्देश्य है। और आंगनवाड़ी के बाद पश्चात हम उस गांव के स्कूल को बेहतर बनाने का हमने प्लान रखा है, और आने वाले 10 वर्ष में उस गांव को एक आदर्श गांव, एक स्वावलंबन गांव और राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज की ग्राम गीता पर आधारित एक गांव बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने आगामी 10 वर्ष का समय चुन निर्धारित किया है, उसमें से हमारे 2 वर्ष का काम हो चुका है।
गुरुवे जी, महिला बाल विकास विभाग द्वारा एडाप्ट योजना चलाई जा रही है, यानी आंगनवाड़ी को गोद देने की योजना चलाई जा रही है। देखने में आया कि कई जनप्रतिनिधियों ने आंगनवाड़ी गोद ली, कई प्रशासनिक अधिकारियों ने ली, यहाँ तक कि महिला बाल विकास अधिकारियों ने भी आंगनवाड़ी गोद ली। तो पिछले 2-3 साल होते आ रहे, लेकिन आपका एक पहला एनजीओ ऐसा सौसर क्षेत्र में दिखाई दिया जिसने बगैर शासन के सहयोग के एक नवाचार करते हुए कुछ ऐसे काम कर दिखाया जो दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन लोगों ने गोद ली है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी, उनकी आंगनवाड़ी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आपसे हमने ये जानना चाहा कि आपने यहाँ आंगनवाड़ी जो गोद ली, यहाँ कैसे संभव हो पाया।
अब
हम इस माध्यम से आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आज विश्व एनजीओ दिवस मनाया जा रहा है, तो बगैर शासन के सहयोग के, बगैर किसी फंडिंग के एनजीओ इतना अच्छा काम कर लेता है, तो इसको शासन का कुछ सहयोग मिल पाता है प्रशासनिक स्तर पर या नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते
हैं। देखिए दिनकर जी, आपका सवाल सवाल कई कई चीजों को, कई मुद्दों को छूता है। लेकिन मैं एक पहला आपका जो सवाल है कि आंगनवाड़ियों को एडाप्ट करने की जो मध्य प्रदेश शासन की जो योजना थी, उसमें जिन लोगों ने आंगनवाड़ियों को एडाप्ट किया है, उन्होंने उसमें क्या विकास किया है, मैं इस पर इसलिए बात नहीं करूंगा कि ये उनका विषय है और किसी दूसरों पर टीका टिप्पणी करना ये मेरा कभी स्वभाव में भी नहीं रहा है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि तर्कशील विचार समिति के साथियों द्वारा बिछवी ग्राम की आंगनवाड़ियों को क्रमशः जो विकसित किया जा रहा है, उसे देखकर अन्य लोग भी अपने स्वयं के द्वारा एडाप्ट की गई आंगनवाड़ियों में काम करेंगे तो वो बेहतर होगा। दूसरा आपका सवाल है कि शासन से क्या सहयोग मिलता है, तो दिनकर जी मैं राष्ट्र संत और पुरोगामी विचारधाराओं के महापुरुषों के विचारों का व्यक्ति हूँ। मैं परावलंबी नहीं, मैं स्वावलंबन पर बात करता हूँ। और जब मैंने अपना स्वयं का संगठन एनजीओ खड़ा किया है, तो मैंने उसी दिन ये संकल्प भी लिया था कि मैं शासन की बैसाखियों पे नहीं चलूंगा। यदि शासन मुझे भविष्य में मेरे काम को, सॉरी मेरे हमारे इस संगठन के काम को देखकर शासन भविष्य में कोई सहयोग करता है तो वह एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि शासन हमको कोई सहयोग करे या कोई व्यक्ति कोई संगठन हमें सहयोग करे तो हम उनके सहयोग को स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो ये सब जन सहयोग से ही काम कर रहे हैं, तो हम सहयोग को जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी है, बीते कुछ वर्षों से काम कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, एनजीओ के साथ में भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ अनुभव ऐसे आए कि हम जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फंडिंग एजेंसियों को छोड़ दिया जाए, तो सामान्य तौर पर गांव में जो एजेंट जो एनजीओ काम करते हैं, जो सामाजिक संगठन काम करते हैं, उन्हें अपेक्षा अनुरूप शासन से सहयोग नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया है, मैंने गुजरात के क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्रों में कुछ एनजीओ के साथ में गया हूँ, वहां मैंने देखा है। तो जितना सहयोग सामाजिक संगठनों को महाराष्ट्र में मिलता है, उतना सहयोग एमपी में नहीं मिलता, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि यदि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने निकले तो हम परावलंबी क्यों रहे, शासन पे परावलंबी क्यों रहे, शासन सहयोग करेगा तो ही हम काम करेंगे। मेरा कहना है कि हम कुछ लोग साथ में मिलकर हम जितना अपने लिए धन अर्जित करते हैं, उसमें एक हिस्सा जो होता है वो समाज के लिए होता है, क्योंकि समाज का हम स्वयं समाज का एक अभिन्न अंग है। और समाज का यदि हम अभिन्न अंग है, तो हम जितना अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए धन जुटाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हमको समाज के काम के लिए देना चाहिए। मैं इस विचारधारा का आदमी हूँ, इसलिए शासन सहयोग करे नहीं करे वो शासन का अपना विषय है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यदि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप एनजीओ बनाकर काम करना चाहते हैं, तो शासन पर निर्भर ना रहे, अपनी स्वयं की फंडिंग करें और अपनी स्वयं की फंडिंग के अनुसार काम करें। दिनकर जी, आपने भी मेरे साथ में काम किया है, संगठन के साथ में काम किया है, मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से भी आप जुड़े रहे हो, आपने भी देखा है कि जब भी हमने गुरु इच्छा शक्ति को लेकर और एक बेहतर विचारों को लेकर, विवेकवादी विचारों को लेकर समाज में काम हमने शुरू किया है, तो हमने कई काम ऐसे काम है कि जिनमें लाखों रुपया खर्च हो सकते हैं लेकिन हमने वो बगैर पैसे से पूरे कराए हैं। इसका एक उदाहरण आपके पास में रामा कोने का संत लीलामृत घाट भी है, वहां आपने बनाई हुई संत लीलामृत वाटिका भी है। ये बात अलग है कि इन चीजों में समाज का अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पाता, और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हमको समाज का सबसे पहले वैचारिक परिवर्तन करना होगा। जब तक हम समाज का वैचारिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक एनजीओ द्वारा किए गए कार्य कितने सार्थक होंगे ये कहना कठिन है।
गुरुवे जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न, आप संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व चिंतित है, देश चिंतित है, और इसको लेकर कई सामाजिक संगठनाएं भी आगे आकर काम कर रही है, और हमने देखा है कि आप ही पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन से खेती को हो रहे नुकसान को देखते हुए आप जैविक खेती को विशेष ध्यान दे रहे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए कि आप अपने खेत में किस तरह की जैविक खेती करते हैं, और आप मोबाइल वाणी के माध्यम से विश्व एनजीओ दिवस पर किसानों को क्या संदेश देना चाहूंगे जलवायु परिवर्तन इस विषय पर।
दिनकर जी, मैं जैविक खेती नहीं करता, मैं मूलतः प्राकृतिक खेती करता हूँ, क्योंकि जैविक खेती यदि करने निकले किसान तो केमिकल से भी जैविक महंगा है। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और स्वयं अपने संतरे के बगीचे में मैंने ये प्रयोग पिछले 5 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि मुझे शुरुआती दौर में कुछ नुकसान उठाना पड़ा, वो कुछ मेरी अज्ञानता भी थी, लेकिन अब मुझे उसका लाभ मिलने लगा है। और जलवायु परिवर्तन के लिए नैसर्गिक खेती ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम नैसर्गिक खेती के माध्यम से भूमि की उपजाऊ शक्ति को हम बनाए नहीं रखेंगे, उनके जो कंटेंट्स है, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु है, जब तक हम उनको नहीं बचाएंगे धरती आपकी उपजाऊ कब तक रहेगी। और हम जिस तरीके से खेती में केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, यह केमिकल जो है भूमि की उपजाऊ शक्ति तो कम कर ही रही है, लेकिन वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। उत्सर्जन की क्रियाओं के माध्यम से तापमान भी बढ़ा रही है। इसलिए आज आवश्यकता है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक यदि नुकसान हो रहा है तो इस समय किसानों को हो रहा है। किसी भी समय बाढ़ आपदा, प्राकृतिक आपदाएं है, बाढ़ है, सूखा है, इसका सामना हमें करना पड़ रहा है। यानी इसका ये अर्थ यह है कि जलवायु परिवर्तन का नुकसान हम उठा रहे हैं, किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। और दिनकर जी, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शुरुआती दौर में जब मैंने अपने स्वयं के खेत में कृषि में जब ये प्रयोग शुरू किए थे तो मुझे आसपास के किसानों ने पागल कहा था कि ये व्यक्ति पागल है और शायद ज्यादा पढ़ा लिखा इसलिए कुछ गलत तरीके से या कुछ अलग कुछ करना कर रहा है। लेकिन जब आसपास के किसानों ने मेरे कृषि में जो लाभ मुझे होने हो रहे हैं वो देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ, और मुझे बड़ा आनंद होता है कि मैंने भूमि को, पहले तो हमारी भूमि ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, मैंने उसको उपजाऊ बनाया, उसको डेवलप किया, वो देखकर मेरे आसपास के कम से कम 1 दर्जन से अधिक किसानों ने अपनी खेतियां विकसित की है। मैं जहां मेरी कृषि है वहां मात्र अकेला मेरा कुआ था, मेरे यहाँ खेती में कुआ था जिसको मैंने बाद में कुछ बड़ा किया, उसको विकसित किया। ये देखकर पिछले 4 वर्षों में 6 किसानों ने अपने खेत में कुएं खुदवाए हैं और अपनी खेतियां सिंचित की है। बात यह अलग है कि वह अभी पूर्णतः नैसर्गिक खेती को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन मेरे द्वारा किए गए प्रयोगों का वो कुछ हिस्सा अपने खेतों में शुरू करते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज जलवायु परिवर्तन को यदि आपको से सामना करना, उसको रोकना है, तो आपको नैसर्गिक खेती की ओर आना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवे जी आपका कि आपने आज विश्व एनजीओ दिवस के अवसर पर मोबाइल वाणी से रूबरू होकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय दी। इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।